Om Shanti. 1661 भारत में एक सूफी संत था सरमद। सूफी इस्लाम की सभी बातें नहीं मानते। इस्लाम कहता है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है और मोहम्मद उसका अंतिम पैगंबर है। ये दो वचन है। पहली लाइन है कि अल्लाह ईश्वर खुदा एक ही है और मोहम्मद उसका अंतिम पैगंबर है, द लास्ट, उसके बाद में और कोई पैगंबर नहीं, क्योंकि वो अंतिम है और उसने जो कुछ कहा और उसके द्वारा जो कुछ सुनाया गया उसके ऊपर और कुछ नहीं है, वो सभी पैगंबरों का सार है। पर सूफी जो विचारधारा है वो पहली बात को तो मानती है कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है, पर जो दूसरी बात है उसके विषय में इतनी चर्चा नहीं करती। इसके लिए सूफियों को बहुत सहन करना पड़ा मुसलमानों के द्वारा। तो ये जो सरमद था सूफी संत, वो भी यही बात कहता था कि अल्लाह एक है, पर वो ये नहीं कहता था कि मोहम्मद उसका अंतिम पैगंबर है। औरंगजेब ने उसे पकड़ा। औरंगजेब का जो भाई था दारा शिको, वो तो सरमद को अपना गुरु मानता था, परंतु जब औरंगजेब हुकूमत में आया तो ऐसे जो भी थे काफिर, कुफ्र करने वाले, उनको पकड़ा गया। उसको फिर से पूछा गया कि बोलो कि अल्लाह एक है और मोहम्मद ही उसका एकमात्र और अंतिम पैगंबर है। उसने कहा पहला मैं कहूंगा, दूसरा तो नहीं कहूंगा, और उसको बहुत बुरी तरह मारा गया। जामा मस्जिद दिल्ली 1661, उसके हाथ तोड़ दिए गए और उसका सर भी काट दिया गया। फिर भी वो एक ही उसका रटन था कि अल्लाह एक है, पर मैं ये नहीं मानता कि मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर है, उसके पैगंबर, उसके मैसेंजर, उसके प्रोफेट्स बहुत है। तो उसका जो सिर था जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे नीचे आ रहा था, उस सिर से भी आवाज आ रही थी कि अल्लाह एक ही है, देयर इज ओनली वन गॉड, ऐसी कहानी है। अब आ रही थी कि नहीं पता नहीं आवाज तो ऐसा ऐसी मान्यता है या कहानियों में है। तो वो क्या कहता है कि ईश्वर तो एक ही है पर उसके पैगंबर बहुत है, अनगिनत है। मोहम्मद में ही रुक नहीं जाता सब कुछ, क्योंकि उसके बाद भी कई जगह पर, हर जगह पर, अलग अलग समय पर वो आते हैं। क्यों आते हैं? परित्राणाय साधुनाथ, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। जिसे वो लोग पैगंबर, पयंबर, प्रोफेट, मसीहा, मैसेंजर, चाइल्ड ऑफ गॉड कहते हैं, भारत के शास्त्र उन्हीं दिव्य आत्माओं को क्या कहता है? अवतार। अवतार क्या करता है? ऊपर से आता है और अलग अलग जगह पर आता है। अवतार के तीन मुख्य कार्य होते हैं। अवतार तीन मुख्य कार्यों के लिए आता है। परित्राणाय साधुनाथ, जो संत महात्मा योगी जन है उनकी रक्षा के लिए आता है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना, जब जब, कब धर्म की स्थापना करता है? जब जब धर्म की ग्लानि, जब जब अधर्म की शक्ति बढ़ जाती है तब तब वो आता है। यदा यदा ही धर्मस्य, कोई एक ही जगह नहीं, किसी भी जगह आ सकता है वो। वो ऐसे कहते हैं जैसे कोई तालाब है जिसमें पानी है, पर कहीं कहीं वो पानी बर्फ बन गया है, तो वो है तो निराकारी, पर जो वो बर्फ बन गया है वो अवतार है, वो कहीं कहीं प्रकट होता है कंडेंस्ड ब्रह्मन। वो जो ब्रह्म है सब जगह और जो एक जगह कंडेंस हो गया है उसको वो अवतार कहते हैं। तो यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, और सृष्टि में धर्म की ग्लानि बीच बीच में होती रही, ऐसी मान्यताएं हैं कि एक अवतार आता है और फिर वो कुछ समय के लिए धर्म ग्लानि को रोकता है और फिर कुछ समय के बाद फिर से धर्म ग्लानि चालू होती, फिर दूसरा अवतार आता है। तो इस तरह से अवतारों की श्रृंखला चालू रहती है। तो अवतार अर्थात जो आता है, वन हु डिसेंड्स, जो ऊपर से आता है। तो अवतार तीन कार्य करता है, एक तो धर्म की स्थापना, दूसरा धर्म स्थापनार्थाय, धर्म की रक्षा नहीं धर्म की स्थापना करता है, नए धर्म की स्थापना। फिर क्या करता है, परित्राणाय साधुनाथ, साधु संतों की रक्षा करता है, योगियों की रक्षा करता है। और लास्ट तीसरा कर्तव्य, तीसरा धर्म संस्थापनार्थ है, उसका दुष्टों का नाश। ये तीन कर्तव्य अवतार करता है। और भारत में अवतार का जो कॉन्सेप्ट है, अवतार की जो अवधारणा है, वेदों में कहीं पर अवतार शब्द नहीं है, किसी भी वेद में अवतार शब्द नहीं आता है। पोस्ट वैदिक पीरियड जो है, एक होता है वैदिक पीरियड, फिर है पोस्ट वैदिक पीरियड, जहां पर पुराण लिखे गए वहां पर अवतारों की चर्चा है, बाकी चारों वेदों में अवतार शब्द नहीं है। पुराणों में भी, पुराण तो बहुत बाद में आए, इवन भगवत गीता में भी अवतार शब्द नहीं है। कहा जरूर है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युद्धानाम धर्मस्य तदात्मानम दुष्ट्रुजाम्यहम परित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का मैं विनाश करता हूं और धर्म की पुनः पुनः स्थापना करता करने के लिए आई इनकार्नेट अगेन एंड अगेन, मैं आता हूं। तो ये तीन कर्तव्य अवतार के बताए हैं। और अवतार की जो कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट आया है पुराणों के बाद आया, और सबसे ज्यादा अवतार किसके बताए हैं, विष्णु के। पर विष्णु एकमात्र नहीं है जिसके अवतार है, सभी के अवतार है, गणेश के भी ढेर सारे अवतार है, देवी के तो बहुत सारे अवतार है, शिव के भी बहुत सारे अवतार है, हर एक के अवतार बताते हैं, पर सबसे ज्यादा जो बताया है वो विष्णु के। और विष्णु के भी ढेर सारे बताते हैं, परंतु दस मुख्य दशा अवतार जिसको कहते हैं, भागवत में 22 अवतार है, परंतु सिख लिटरेचर में दशम ग्रंथ में 24 अवतार बताए हैं। इसके लिए मुरलियों में जो आता है 24 अवतार की बात आती है, क्योंकि ये जो दशम ग्रंथ है गुरु गोविंद साहिब का, उसमें 24 अवतार का वर्णन है। भागवत में 22 अवतार बताए हैं, और वैसे दश अवतार मुख्य, दश अवतार। तो अवतार अर्थात जो कि आता है, और अवतार के लिए कहा जाता है वो स्वयं भगवान ही है। दो प्रकार के अवतार, एक पूर्ण अवतार एक अंश अवतार। पूर्ण अवतार अर्थात स्वयं वही आता है, परंतु ये हमारा भारत है जिसमें भगवान ही खुद आता है, पर जो विदेश है उसमें भगवान नहीं आता है, वो भेजता है, वो अपने मैसेंजर्स को भेजता है, पैगंबर को भेजता है। तो बीरबल एक बार अकबर से पूछता है ऐसा क्यों, नहीं अकबर पूछता है बीरबल से ऐसा क्यों कि तुम्हारे देश में, तुम्हारे धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान खुद आते हो और हमारे धर्म में वो उसके बेटे को क्रिश्चियन धर्म में अपने माय ओनली बिगॉटन सन, ये मेरा एकमात्र इकलौता पुत्र है जिसको मैं तुम्हारी रक्षा के लिए भेज रहा हूं, और इस्लाम धर्म में भी भेजे गए हैं, पर ये तुम्हारे धर्म में ऐसा क्यों। तो बीरबल कहता है चलो मैं कल बताता हूं, और वो कहता है कि चलो हम शिकार करने जाते हैं, और शिकार करने जाते हैं तो बीरबल अकबर का जो बेटा है उसको भी लेते हैं, वो भी एक घोड़े पर बैठता है और वो जाते हैं। तो बीरबल क्या करता है कि एक पुतला भी बनाता है उसके बेटे का और उसको बिठाता है, और रियल बेटा उधर पीछे रहता है। तो जैसे ही वो आगे आगे जाते हैं, ठीक है, एक कुआं आता है, तो बीरबल क्या करता है, उसके बेटे के साथ होता है, अकबर पीछे होता है, बीरबल उसके बेटे को कुएं में फेंक देता है, तो पुतले को, और जैसे ही अकबर देखता है वो उतरता है और भागता है और सीधा कूदता है कुएं के अंदर अपने बेटे को बचाने के लिए। तो देखता है तो ये तो पुतला है, तो बोलते ये कैसा प्रयास है। तो बीरबल पूछता है आपके पास इतने सैनिक थे, उनको भेजना था ना, खुद ही क्यों गए। तो वो कहता है वो मेरा बेटा है। तो बोलते बस यही कारण है भगवान के जो भी बच्चे है वो भारत में ही है, और भारत में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो डायरेक्ट आता है, वो किसी को नहीं भेजता है। हाँ तुम्हारे धर्म में अलग अलग को भेजते रहता है, पर इधर में प्यार ही उसको इतना ज्यादा है, अपनत्व है, अपनापन है इधर, इसके लिए वो खुद ही भेजता है और खुद ही आता है। तो परमात्मा, ये जो अवतारवाद है इसको कहते हैं अवतारवाद, पर ये वाद सबको स्वीकार नहीं है, कई धर्मों ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया है, जो बाहर के धर्म है, हिंदू धर्म में बहुत सेलिब्रेटेड है, पर हिंदू धर्म में भी जो निवृत्ति मार्ग वाले वेदांत वाले वो अवतार वाद को नहीं मानते, वो तो कहते ब्रह्म है सब कुछ, इसमें अवतार कहां से आया। तो उसमें भी दो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो मुरली है कल की, संडे की, बाबा ने क्या कहा, तुम सब कौन हो। वैसे अवतार तो भगवान लेते हैं, यहां हमको कहा तुम ही अवतार हो, और किसी एक मुरली में कहा कि संसार में यदि एक अवतार आ जाए तो क्या करता है, वो क्रांति ला लेता है, पूरा एक नई वेव, एक नई लहर दौड़ाता है, जो संसार में पतन हो गया था उसको एकदम से रोक देता है, ठीक कर देता है सब कुछ। तो संसार में एक अवतार आता है तो क्रांति आ जाती है। तुम इतने अवतार जब धरती पर उतरोगे तो कैसी क्रांति आ जाए, कैसी क्रांति आ जानी चाहिए, किसी अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा। तो हम सब के लिए बाबा ने कहा कि तुम हो अवतार। और अवतार का जीवन कैसे होता है, अवतार की क्या क्या विशेषता है, अवतार 10 अवतार है। सबसे पहले मत्स्य अवतार दिखाया है, भगवान विष्णु दिखाए हैं, मछली के रूप में आते हैं और वो बारिश होती है, बहुत सारा सारा जलमय संसार हो जाता है, वो सारे प्राणी और एक नाव में आ जाते हैं मनु और उनको लेके जाता है, एक अवतार तो ये दिखाया है। फिर दूसरा अवतार वराह अवतार, धरती जमीन के अंदर समुद्र के अंदर वो राक्षस लेके गया, उसको बाहर निकालता है, एक वराह अवतार। फिर कूर्मा अवतार, वो समुद्र मंथन होता है उसके नीचे और वो मंथन चलता है। फिर नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, फिर राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, काल्की अवतार, ऐसे 10 अवतार बताए हैं। तो सारे अवतारों के जीवन में एक बात है कि बचपन से लेके ही उन्हें पता है कि हम अवतार हैं। एक जैसे हम उदाहरण लेंगे कृष्ण का, जन्म भी अलौकिक है, साधारण जन्म नहीं है, एकदम अलौकिक जन्म है, बर्थ उधर डिलीवरी उधर और फिर पालना उधर से चालू हुई, और उसको निरंतर पता है कि मैं कौन हूं। एक वो कभी नहीं भूलता मैं कौन हूं, और दूसरा बचपन से ही झंझट लफड़े सब चालू, विघ्न ही विघ्न, ऐसा कोई पल नहीं है उसके जीवन में कि शांति से बैठा है, क्योंकि उधर से कभी पूतना आ रही है तो कोई कोई आ रहा है तो कोई कोई कुछ ना कुछ आ ही रहा है, और उसको कोई कंप्लेंट भी नहीं है उसके प्रति कि है वो, सो बोलता है कभी ये कंस ऐसा क्यों करता है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, मुझे शांति से जीने नहीं देता है, उसको कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं कंस के विषय में। और जो भी उसके जीवन में हो रहा है, कृष्ण के जीवन में कैसा लगता है उसको, खेल लगता है। कृष्ण को कभी रोता हुआ दुखी देखा, राम तो भी दुखी होता है, राम तो देखो दुखी है, उसके पास धनुष विनुष्य है, कृष्ण के पास कुछ नहीं है, वो खाली हाथ घूमता है, जरूरत पड़ी तो प्रकट करता है अपना चक्र, बाकी वो खाली हाथ ही है और हंसता खेलता हुआ है। लीला पुरुषोत्तम कहां है कृष्ण को, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहां है, राम तो दुखी होता है, हे सीते रोता है बहुत। कृष्ण को कभी रोता देखा, हे राधे हे रुक्मिणी, कुछ नहीं उसको रोने का तो कोई लेना, वो तो कोई लेना देना ही नहीं है उसको, खेल नाच, ये दुखी कभी नहीं होता है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देख है, सीता मृग नहीं, राम तो गाता है हे खग मृग, हे बताओ कहां है मेरी सीता, मेरी सीता, रोता है बेचारा, पर कृष्ण कभी रोता नहीं, कृष्ण कभी शिकायत नहीं करता। कृष्ण के लिए सब कुछ खेल है। कृष्ण के जीवन में जितने विघ्न है, राम के जीवन में कहां विघ्न है? एक बस। यहां तो देखो बचपन ही विघ्नों से चालू हुआ, अवतार का जीवन ही विघ्नों से चालू हुआ, और विघ्न ही विघ्न, नए नए विघ्न हर दिन, पर वो कभी दुखी नहीं, कभी उदास नहीं, और उन सब के साथ वो रहता है। और जब छोड़ने की बारी आती है, धक से छोड़ देता है। बाद में कोई वर्णन ही नहीं है कृष्ण के जीवन में, वो कभी गोकुल गया, उन गोपियों से मिला या राधा से भी मिला, कोई वर्णन नहीं है। जिसको छोड़ दिया, छोड़ दिया, नष्ट मोह है बिल्कुल। फिर उधर का पार्ट चालू, वो गुरु के आश्रम में है, वहां भी डिटैच्ड बड़ा होता है, जो कुछ करता है षड्यंत्र, पर वो डिटैच्ड है। और जो उसके खिलाफ षड्यंत्र करने वाले हैं, उनके प्रति भी वो आश्वस्त है, वो मुझे कुछ नहीं कर सकते, उसको अपनी शक्ति पर इतना विश्वास है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली है, नष्ट मोह है, खेल लगता है, निर्लिप्त, कोई भी चीज का लेप छेप उसके ऊपर नहीं है, और उसको अपने जाने का समय भी पता है, और वो सबका मित्र भी है, और सबके कल्याण का भी सोचता है। तो ऐसा चरित्र जो है वो होता है अवतार। तो क्या कहा बाबा ने, कौन किसको मिलने आया है? बाबा क्या करने आए हैं? आवाज से जो परे रहता है वो आवाज में आ रहा है। किस लिए? तुमको आवाज में परे ले जाने के लिए। ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम आवाज से परे रहे, और आवाज में आए किस लिए? आत्माओं को आवाज से परे ले जाने के लिए। दूसरा, वो अव्यक्त है, वो व्यक्त में आ रहा है, किस लिए? आत्माओं को अव्यक्त बनाने के लिए। तो बाबा ने कल की मुरली में 9 निशानियां बताई है अवतार की। अवतार में ये 9 या 10 ले लो, चलो उधर 10 अवतार होते तो 10 कर देते इसको भी उधर दशम अवतार है ना, दशा अवतार। तो सबसे पहली निशानी है अवतार की, अव्यक्त स्थितिधारी। अवतार कैसा है? अव्यक्त स्थितिधारी और फरुष्ता रूपधारी। अवतार अर्थात जो अव्यक्त स्थिति में है, अवतार अर्थात जो फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहता है, ये उसकी प्रथम लक्षण अवतार का। मतलब वो व्यक्त नहीं है, वो फरिश्ता स्वरूप में रहता है निरंतर। और बाबा कह रहे तुम फरिश्ते, तुम अवतार हो। अब ये जो कॉन्सेप्ट है अवतार का, हमारे जहन में ऐसा बैठ गया है कि हमने भगवान के अवतार को ही माना है, कभी हम भी अवतार है ये हमारी बुद्धि में अभी नहीं है। तो धीरे धीरे इसको अंदर घुसाना है कि मैं ही अवतार हूं। और अवतार अर्थात महान होते हैं अवतार, महान कार्य करने के लिए आते, छोटे मोटे कार्य के लिए नहीं। अवतार का जन्म तिथि तारीख सब महान होती है, जिस घड़ी जन्म होता है बाद में उसके सेलिब्रेशन होते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, पावन काल अति शीत नगामा, तेहि काल जगत विश्रामा। राम का जन्म कब हुआ? जब शीत भी नहीं, बहुत उष्ण भी नहीं, अभिजित हरि प्रीता, ऐसे पूरा वर्णन है उसका। ये समय पर राम का जन्म होता है। विप्रसंत सुरधेनुहित प्रभुधरि विविध शरीरा, किस लिए आता है वो? विप्रसंत सुरधेनुहित, सबके कल्याण करने के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए। सुर धेनु हित प्रभुधरि विविध शरीरा, भगवान अलग अलग शरीर धारण, ये भक्ति की कहावतें हैं। तो बाबा यहां कह रहे हैं अवतार की सबसे पहली निशानी है वो कैसा है? अव्यक्त रूपधारी है और फरिश्ता स्वरूप है। दूसरी निशानी अवतार की, किसी भी कर्म के बंधन में वो फंसता नहीं है। जैसे कृष्ण का उदाहरण ले लो, क्योंकि उसे 16 कला बताया है, सर्वोच्च अवतार बताया है, संपूर्ण अवतार बताया है। राम 14 कला है, कृष्ण 16 कला है। कृष्ण किसी भी कर्म में अटैच नहीं है, सब कुछ करता है वो, पर अटैच कहीं नहीं है, कहीं पर भी उसकी आसक्ति नहीं है, किसी में मोह नहीं है। हाँ, अर्जुन को उसने कहीं कहीं कहा है कि तुम मुझे प्रिय हो, इसके लिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या भीम में क्या कमी थी, उसको क्यों नहीं सुनाई गीता दुर्योधन ने अपना युधिष्ठिर को क्यों नहीं सुनाई, नकुल सहदेव तो इसको ही क्यों सुनाई। प्रतिजानी प्रियोसी में, हे अर्जुन क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए मैं तुमको सुना रहा हूं। मन मना भव मद भक्तो मध्याची माम नमस्कुरु, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। प्रतिजानी प्रियोसी में, तुम मुझे बहुत प्रिय हो इसलिए मैं तुमको सुनाता हूं, मेरी शरण में आ, मुझे नमस्कार कर, मैं तुझे मुक्त करूंगा। तो अवतार अर्थात कोई भी कर्म के बंधन उसे स्पर्श नहीं करते। मनमोहिनी दीदी से कभी बाबा ने बात की थी जो कभी प्रिंट नहीं हुई, शायद किसी क्लास में हमने सुनी। बाबा ने कर्मातीत की परिभाषा बताई, कर्मातीत अर्थात शरीर छोड़कर जाना नहीं। कर्मातीत की बहुत सिंपल और सबसे पावरफुल परिभाषा है, कर्म और कर्म का परिणाम तुम्हें टच न करे, यह है कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत अर्थात कर्म और कर्म का परिणाम, कर्म का परिणाम कर्म से भी सूक्ष्म है। जैसे हमने बहुत सेवा की और परिणाम में असफलता, तो दुखी नहीं हो जाना है, हलचल में नहीं आ जाना है। जैसे टीचर से बाबा ने कहा तुम्हारे सेंटर पर कोई अनन्य है और अचानक एंटी हो जाए, वो एक अलग बात है कि उसके लिए तुम शुभ भावना शुभकामना रहम की भावना रखते हो, परंतु खुद हलचल में आगे खुद ऊपर नीचे हो गए, इसको क्या कहेंगे? मतलब कर्म ने परिणाम हो गया तुम्हारे ऊपर। तो कर्म अर्थात अवतार अर्थात जिसको कोई भी कर्म के बंधन में वो बंधता नहीं है, उसे बंधन स्वीकार ही नहीं है। कर्म करता है और डिटैच, कर्म किया और हो गया काम पूरा, भूल गए उसको, दरिया में डाल, नेकी कर दो और भूल जाओ। उसका पूरा अकाउंट नहीं रखना है, मैंने ये किया, मैंने इतने लोगों को संदेश दिया, ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया, किया और भूल गए, उसका कुछ चिंतन नहीं कुछ नहीं। ऐसी लाइट अवस्था जो है वो अवतार की अवस्था है। तीसरा, अवतार निरंतर स्मृति रहती है कि मैं ऊपर से आया हूं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो देह भान कहां से आएगा? देह का भान नहीं, देह का भान भी कहां से आएगा? फिर बाबा ने कहा अवतार अर्थात जिसको ये स्मरण है कि मैं ऊपर से आया हूं। इसका दो तीन जगह दिनचर्या में अभ्यास कर सकते हैं। अमृत वेला उठते ही क्या सोचेंगे? मैं अभी अभी अवतार लेकर आया हूं, शरीर तो नीचे पड़ा था मृत, मैंने अभी अभी इस शरीर में प्रवेश किया है, अभी अभी राइट नाउ। और मुरली सुनते समय पढ़ते समय भी ये संकल्प कि मैंने मुझ आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, कर्म करने से पहले भी मैं आत्मा इस तन में आई हूं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। तो अवतार का तीसरा लक्षण है कि अवतार ऊपर से आता है, अवतार मैं आया हूं, किस लिए आया हूं? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आया हूं, और बस श्रेष्ठ कर्म कर दिया और मुझे कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं। चौथा, परमात्मा पैगाम देने के लिए आता है अवतार। किस लिए आता है अवतार? मैं पैगाम देने के लिए आया हूं बस, मुझे किसी के झंझट में फंसना नहीं है, कोई नए बंधन क्रिएट नहीं कर देना है। यहां पर काम है मेरा पैगाम देना और निकल जाना बस, उनसे दोस्ती विस्ती करके बैठ नहीं जाना, उनके प्यार में फंस नहीं जाना। प्यार मोहब्बत इश्क ये सबसे उपराम, क्योंकि ये बंधन ऐसे बांधते हैं कि फंस जाता है व्यक्ति उसमें। जैसे कल भी कह रहे थे ये ईश्वरीय परिवार है, अलौकिक परिवार है, इसको लौकिक परिवार नहीं समझना और इसमें लौकिक की वो सारी बातें इधर नहीं लाना। इसके लिए इन दिस फैमिली, इस परिवार में नो पर्सनल रिलेशनशिप्स, मेरा भाई मेरी स्पेशल स्पेशल भाई तुम्हारे लिए स्पेशल टोली, स्पेशल राखी, स्पेशल बहन तुम्हारे लिए गिफ्ट स्पेशल, स्पेशल मिला मुलाकात। यज्ञ की नियमावली में एक जगह लिखा हुआ है कि ब्रह्मा कुमार एक और एक ब्रह्मा कुमारी एकांत में अकेले में बैठ के वार्तालाप करना वर्जित है। पहले व्हाट्सएप से चालू होगा और फिर साकार में होगा, चालू वहां से होगा और साकार में होगा, फिर लंबा समय तक एकांत में बैठकर वार्तालाप करते रहना, चिटचट करते रहना, चाहे ज्ञान की करो उसमें भी माया है। या फिर पुरानी की हुई वार्तालाप को याद करना, या फिर पुराने भोगे हुए भोग का प्रेममय स्मरण करना, जो हो गया वो हो गया, पास्ट, स्वप्न था वो, शैडो थी, परछाई थी, आई और चली गई, वो भी शरीर का हिसाब किताब था, इमोशंस का हिसाब किताब था, विचारों का हिसाब किताब था, कर्मों का हिसाब किताब था, भावनाओं का हिसाब किताब, अब वो वहां पूरा हो गया, अब उसको लेके नहीं चलना है जीवन भर कि वो क्यों किया, वो क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ, अच्छा ही हुआ हुआ, अनुभवी तो बने, कंघी तो मिली, भले अब बाल नहीं है, दूसरों को तो दे सकते हैं कंघी उनके बाल ठीक करने के लिए, अपना तो कुछ करना नहीं है, पर अनुभव तो है। तो चौथा लक्षण है वो परमात्मा पैगाम देता है, आत्माओं को भगवान से मिलाता है, उसका और कोई काम नहीं है इस संसार में, इस संसार के चमक धमक चकाचौंध में वो फंसता नहीं है, गया परमात्मा संदेश दिया और ऊपर गए, संदेश दिया गीता पाठशाला में गए, कोर्स भी कराया और वापस, वहां पे फोन नहीं करते बैठे ना अभी उधर क्या चल रहा है, और वो आता है क्या, उसको इधर भेजो, उसको मेरा नंबर दो, फिर मुझे उससे बात करनी है, फिर उसके घर में क्या हो रहा है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है किसी के, डिटेल में गए कि फंसे, जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना है वो क्या जाएगा, खत्म। पर सबके प्रति शुभ भावना, दे तो ठीक ना दे तो ठीक, जो दे उसका हो भला और जो ना दे उसका भी भला और ज्यादा भला। तो चौथा लक्षण है अवतार का कि वो क्या करता है, परमात्मा पैगाम देता है। पांचवा लक्षण, उसकी दो चीजें उसने भगवान को दे दी है, शरीर और आत्मा। शरीर और आत्मा, शरीर क्या समझता है, ये शरीर क्या है देवेंद्र भाई, कैसे मिला है, लोन में मिला है, किस बैंक से, ईश्वरीय बैंक से लोन में मिला है ये शरीर, कितनी कीमत है इस शरीर की, 30 करोड़। तो शरीर मिला है किस लिए, तुमको दिया गया है, ये लोन में दिया हुआ है, तो उसको सेवा में लगाना है, दो ही काम में लगाना है शरीर को, सेवा और तपस्या, बस। ये देह ना तो तुम्हारे अपने भोग के लिए, ना ही किसी दूसरों के भोग के लिए, ना तो जन्म नया लेना है और ना ही जन्म देना है, कैसा क्रांतिकारी वाक्य था, ना तो संगम युग में अब बाप बनने का संकल्प करना है और ना ही मां, क्या कहा बाबा ने अशोक भाई, ना तो तुमको इस संसार में जन्म लेना है दूसरा और ना ही किसी को जन्म देना है, तो बाप बनने का और मां बनकर मां की पालना करने का और बच्चों का बहुत लालन पालन करने का, ऐसे खुराफाती संकल्प से मुक्त हो जाओ। हम भाई तो बनो ना, हम भाई भले बन जाओ पर स्पेशल भाई मत बन जाना किसी का, स्पेशल नहीं ना, सादा वाला, ठीक तो पांचवा है वो अपने शरीर को भी दे चुका है और आत्मा को भी दे चुका है, अब ना तो उसका शरीर पर कोई अधिकार है और ना ही आत्मा पर, दोनों ही स्वाहा कर दिया है। छठवा, हद के मैपन से परे, अवतार अर्थात बेहद के मैपन में रहता है, ये नया शब्द है, मैपन में तो रखना है, मैपन तो रखना है, पर कौन सा मैपन, बेहद वाला मैपन, मैं बाप का वो मेरा, वो बाप मैं मास्टर, मैं उसका हूं, ये बेहद का मैपन। और हद का मैपन क्या करता है, हद का मैपन क्या करता है, मुरली का बताओ, एक साल के मुरली का नहीं, कल की मुरली का बताना है, विघ्नों से मुक्त करता है, विघ्न विनाशक बनाता है, बेहद का मैपन, और मैं के फेरे में फंसाता है कौन, हद का मैपन, तो वो तालाब का मेंढक नहीं बन जाना है, जो सोचता है मेरा जो तालाब है ना ये सबसे बड़ा है, यही समुद्र है। तो बेहद का मैपन ये है छठवा। सातवा, अवतार कोई भी व्यर्थ के खाते नहीं क्रिएट करता है। व्यर्थ के खाते क्रिएट करना अर्थात किसी के साथ कोई नया रिलेशन क्रिएट कर देना, तुम मेरी मां हो, तुमको देखता हो तो मां की याद आती है, अलौकिक मां, या तुम मेरे अलौकिक बेटे ही हो, तुमको देखती हो तो मेरे बेटे की याद आती है। माओं में संस्कार होता है कुमारों को देखकर बेटा बनाने की इच्छा, भाइयों में संस्कार होता है बहनों को देखकर बहन बनाने की इच्छा, बहनों में संस्कार होता है कोई अच्छा सा भाई मिल जाए तो उसको अपना भाई बना दो, पिता बनाने के संकल्प थोड़े कम ही आते हैं पर बेटा या मां बनाने के थोड़े ज्यादा होते क्योंकि बड़े प्योर संबंध है, बहुत पवित्रता है संबंधों में। पर यहां बात पवित्रता और अपवित्रता की नहीं है, यहां बंधन की है भी तो बंधन ही, वो भी तुमको पहले ही तो सारे बंधन भूलने, नए बंधन क्यों अब नए क्रिएट करने, हाँ सब छोड़ के आए और यहां नया घर बसा दिया, मन में घर बसा के रखा है, मन में पता नहीं क्या क्या है, वो तो है परंतु मेंटल मैरिजेस क्रिएट करके रखे है, मानसिक विवाह करके रखा है, वैसा नहीं, वैसे विवाह से तो घृणा है पर मन में किसी को बसा के रखा है। तो अवतार क्या करता है, अमानत में ख्यानत का खाता नहीं बनाता है, अवतार क्या करता है कोई भी व्यर्थ का खाता नहीं बनाता है, अवतार क्या करता है फ्रेश बॉन्डेजेस क्रिएट नहीं करता है, जो बंधन पहले से है वो ठीक है, नए नए बंधन नहीं बनाने हैं, सेंटरों पर फोन करना और फिर उनसे कॉन्टैक्ट्स और फिर नए संबंध क्रिएट करना और फिर वार्तालाप और फिर चिट चैटिंग फिर व्हाट्सएप मैसेजेस और ऊपर से नाम अत्यंत शिष्ट सेवा और अंदर से भावनाओं की उहापोह उथल पुथल। इसके लिए अवतार अर्थात नो क्रिएशन ऑफ बॉन्डेज, कोई व्यर्थ का नया खाता नहीं बना देना है। छठ, सातवा, आठवा, अवतार अर्थात निश्चय और नशा। कौन सा निश्चय और नशा, दो चीजें बताइए वहां पर, श्रद्धाबेन, सुशील भाई, कमलेश भाई, कौन सा निश्चय और नशा, निखिलेश भाई, नहीं कौन सा निश्चय और नशा, मैं श्रेष्ठ अवतरित आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी अवतरित आत्मा हूं, श्रेष्ठ अवतरित आत्मा और विश्व कल्याणकारी आत्मा, ये जब नशा रहेगा तो दो चीजें हो जाएगी, कौन सी, उपराम और अपरंपार क्या, प्राप्तियां होगी। एक तो उपराम रहना, अवतार की एक क्वालिटी है कि अवतार उपराम रहता है, जैसे कृष्ण को दिखाया हमेशा उपराम है, वो नीचे की कोई भी चीजों से फंसता नहीं है, वो द्रौपदी उसको बार बार कहती है मेरे खुले हुए केश, मेरे खुले हुए केश, एक बार उसको भी चुप करा दिया उसने, तुम्हारे खुले हुए केश भारतवर्ष से श्रेष्ठ नहीं है, जो जब देखो तब मेरे खुले हुए केश, मेरे खुले हुए केश, मुझे दुर्योधन की छाती का लहू चाहिए, अरे क्या लगा रखा है, यहां बात विश्व भारत की चल रही है, तुम्हारा व्यक्तिगत बदला और तुम्हारा व्यक्तिगत अपमान क्यों बीच में ला रही हो, जब देखो तब एक ही बात बस करो रखो बाजू में तो वो उसे अपने विश्व कल्याण का कार्य याद रहता है, वो कोई व्यक्तिगत किसी की समस्या के लिए नहीं आया, वो कहता है ना द्रौपदी चिरहरण, केवल द्रौपदी चिरहरण नहीं था, वो एक सामाजिक समस्या थी, वो कोई द्रौपदी के लिए मैं नहीं आया था। तो अवतार को उसके जो विचार है वो ऊंचे है, वो छोटे छोटे इसमें नहीं फंसता है, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे लगावों में, छोटे छोटे संकल्पों में बड़ा ऊंचा रहता है, विश्व कल्याण के उसके संकल्प रहते, हायर रहते, बहुत बहुत त्रिकाल त्रिनेत्र से देख लेता है चीजों को। तो आठवां है निश्चय और नशा। नौवा कौन बताएगा? इसका संबंध दूसरे से है, इसका संबंध तीसरे से है। तीसरा पॉइंट था कि वो आया है, नौवा पॉइंट है उसे जाना है। उसे क्या स्मृति है अवतार को? कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैं यहां का नहीं हूं, ये दुनिया हमारी नहीं है, यहां रहना नहीं है। लंगर उठ चुका है, पुरानी दुनिया पीछे छोड़ चुकी है, लंगर उठ गया है, नाव निकल पड़ी है, तुम हो संगमवासी। तो उसको क्या स्मृति रहती है कि मुझे वापस जाना है, वापस जाना है, वापस जाना है, मुझे कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, स्थान में, पद में, पोजीशन में, सेवा में, किसी में भी फंसना नहीं है। मेरा काम था बस, उसके लिए मैं आया और अब मैं जा रहा हूं। तो यह है नौवा। दसवा, सुनना अर्थात स्वरूप बनना। बाबा ने कहा यह सारी बातें तुमने सुनी, अब इसका स्वरूप बनना। तो अवतार अर्थात जो सुनता है और स्वरूप बन जाता है, ऐसे दश अवतार है। अवतार की दस बातें सारी एक देखा जाए, हम भी स्वरूप बनकर ही है, केवल विस्मृति में है। तो ये दस बातें याद रखनी है। फिर से रिवाइज करते हैं। पहला अवतार अर्थात अव्यक्त स्थिति में रहने वाला और फरिश्ता रूपधारी। दूसरा, उसको कोई भी बंधन में वो बंधता नहीं है, कर्म किया और उपराम, कर्म किया और उपराम, उसे बंधन स्वीकार नहीं है। ये संकल्प हमारे अपने मन में निरंतर रिपीट करते रहना है कि मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। मुझे बहुत पावरफुल संकल्प है ये, मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है, मैं रिजेक्ट करता हूं सब बंधन को। इसके लिए कोई भी आ जाए और मुझे बंधन में डाल दे, ये नहीं हो सकता। कोई पुरानी स्मृति आ जाए और मुझे बांध रही है, ये भी मुझे स्वीकार नहीं है। कोई पुराना संकल्प, कोई पुराना स्वभाव, कोई पुरानी मेरी आदत आ रही और बांध रही है, ये भी मुझे स्वीकार नहीं है। व्यक्ति तो दूर की बात, मन में ही संकल्प। तो स्वीकार नहीं करना है बंधनों को, किसी भी तरह के बंधन, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, क्योंकि जो सूक्ष्म है वो धीरे धीरे स्थूल बन जाते हैं। थोड़ा 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 करते करते क्या होता है? हथौड़ा लगता है। थोड़ा ही तो है, थोड़ा ही तो है, ज्यादा कहाँ है, थोड़ा ही है, थोड़ा नहीं बहुत है। इसके लिए ब्राह्मण अर्थात फरिश अवतार अर्थात कोई भी कर्म उसे बांधे ना। तीसरा, मैं ऊपर से आया हूं। किस लिए आया हूं? श्रेष्ठ कर्म करने। इसलिए व्यर्थ कर्म नहीं कर सकता, व्यर्थ की बातें नहीं कर सकता और ना ही किसी में फंस सकता हूं। टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मेरा टाइम बहुत अमूल्य है, बहुत 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 अमूल्य है। इसके लिए निकल गए घूमने फिरने, टाइम वेस्ट। शरीर, भोजन शरीर के लिए, पर उसी में सारा टाइम, उसी में सब कुछ लगे हुए है। तपस्या रह गई बाजू में और भोग विलास और विलासिता पूर्ण जीवन है। प्रश्न ही है कि भोगी है या योगी है। अपने आप से पूछना, मैं हूं कौन, योगी हूं या भोगी हूं? हाइब्रिड मिक्स्ड। अगला चौथा, पैगाम देने आया हूं, परमात्मा आत्माओं को भगवान से मिलाने आया हूं। पांचवा, शरीर और आत्मा दोनों ही उसको दिया, सरेंडर की परिभाषा दी है टीचर से मुलाकात, डबल सरेंडर अर्थात सब कुछ बाप के प्रति, सब कुछ बाप के प्रति। बहुत ऊंची परिभाषा है, बहुत ऊंची। अगला, बेहद का मैपन। तो इसमें एक लिस्ट बनानी है, बेहद के मैपन कौन कौन से है। हद के मैपन तो पता है, बेहद वाले मैपन कौन से है? वो रखना है। बाबा कहते हैं शुद्ध घमंड, बेहद का मैपन, शुद्ध मोह, ये रखना है, ये उसके परिष्कृत स्वरूप है। तो बेहद का मैपन। अगला, व्यर्थ का खाता बनाना नहीं है। खाते बहुत बना लिए, बहुत अकाउंट्स, अभी हिसाब समाप्त, किताब बंद, किताब को बंद कर दो, अकाउंट्स को नए नहीं बना दे। इसके लिए नई जो आत्माएं आप जीवन में आएगी, अब तक जो आ गई वो ठीक है, पर आज के बाद जो नई आएगी उनको न्यूट्रल रहना है, उनके साथ ज्यादा अकाउंट्स नहीं बनाते रहना है। गलती हो गई, सॉरी सॉरी भेज रहे, सॉरी सॉरी भेज रहे, नए क्रिएट कर रहे खाता। वैसे तो देखा जाए तो अच्छी चीज है, पर वो भेज ही रहे, भेज ही रहे, भेज ही रहे, मेरे से गलती हो गई। जैसे एक पेशेंट थी तो हमारे हॉस्पिटल अभी कुछ दिनों पहले, उसको पता नहीं, उसको लगा कि उसने कुछ गलती कर दी, रिलेटिव थी एक पेशेंट की, और वो कंटिन्यूअस मैसेजेस भेज रही, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि अगर हमने एक भी मैसेज कर दिया उसको तो गए वो कुछ ना कुछ और करेगी, नई बॉन्डेज वो रह गया, माफी का बाजू रह गया, नया ही चालू होगा कुछ। इसके लिए न्यू फ्रेश बॉन्डेज, कभी कभी नो रिस्पॉन्स सबसे बेस्ट फिलॉसफी है, क्योंकि आप तो बहुत शक्तिशाली है पर वो दूसरी जो आत्मा है वो कमजोर है, दूसरी आत्मा कमजोर है, वो कमजोर है, उसके पास अभी शायद कम शक्तिशाली है पर जीवन में उथल पुथल बहुत है, नीचे जाएगी ना तो आपको याद करेगी, फिर पकड़ लेगी। तो इसलिए वो तो है जो है, पर हमको वो नहीं सोचना है मेरे अकाउंट्स में है, सोचो कुछ नहीं है, सब न्यूट्रल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, मेरे सारे अकाउंट्स, ये घर के जो लोग हैं, पति पत्नी बच्चे, इनके साथ मेरे अकाउंट्स क्लियर हो गए। अब वो उनका मार्ग, हम अपने मार्ग, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, यहां कोई ना हाथ पकड़ पकड़ के जाना है, वहां पैदल ही जाना है और अकेला जाना है खुदा के घर, कि पकड़ पकड़ के जाओगे तो कोई नए खाते नहीं बनाने, अभी नो ही अकाउंट बुक नहीं खोलनी है, परचेस नहीं करना है कोई नया रजिस्टर, और उसमें लिखना नहीं चालू कर देना है, जो है वही तो बहुत है, वही तो चुप तो नहीं हो रहे, उसी की तो याद है अब तक सता रही, और यहां नए कहां से क्रिएट कर रहे हो। जो जीवन में व्यक्ति आ गए उन्होंने ऐसी खतरनाक हलचल मचा के रखी है, उथल पुथल, कि अब मैं जो नए आएंगे उनके सब कब निपटू, पुरानी यादें इतनी ज्यादा है, ये नए यादें कहां से क्रिएट करूं। सो नो क्रिएशन ऑफ अकाउंट्स। अगला, निश्चय और नशा। अवतार को नशा होगा, अवतार को निश्चय होगा, किस बात का, विश्व कल्याणकारी हूं, श्रेष्ठ अवतरित आत्मा हूं, यह अवतरित जीवन है बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन अर्थात अवतरित जीवन, इनकार्नेटेड लाइफ। अगला नौवा, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे पकड़ो मत, मुझे जाना है, जाना है, जाना है, ये जाना है, ये सबसे सूक्ष्म साधना है, ये सबसे सूक्ष्म साधना है, और ये किसी को दिखावे की बात नहीं, ये कहने की बात नहीं, ये बोलने की बात ही नहीं, ये बात है कि यहां का ये जो भी सेवाएं भी कर रहे हैं, ये खिलौना है जो बाबा ने दिया है, नाम मात्र है, बाकी मुख्य पुरुषार्थ है उपराम, यहां से निकल जाना है, यहां से निकल जाना है। जल की मछली जल में बली, घर की आत्मा घर में बली, बस वहीं रहना है, वही घर है, उसकी याद आ जाए, वो स्पिरिचुअल नॉस्टैल्जिया, होम सिकनेस, उदास उदास लगे थोड़ा अंदर से, ये अच्छा नहीं लगता है, यहां के लोग, यहां की बातें, व्यक्त चीजें, उपराम उपराम उपराम, अंदर से धुन धुन धुन, लगन लगन लगन, एक ही होना, बस चलो यहां का पूरा हुआ, ये सारे जो कुछ है वो थोड़े समय के लिए, हमको तो जाना है। लास्ट सुंदरा अर्थात स्वरूप बन जाना। तो ये अवतार के 10 लक्षण है। ऐसे कैसे ऐसे अव्यक्त फरिश्ता आत्माओं को, ऐसे एक एक बोलते जाओ पूरे, अब एक ऐसे, वो ऐसे कोई भी बंधन में नहीं बंधने वाली आत्माओं को, ऐसे निरंतर एक बाप बाप मेरा इस स्मृति में रहने वाली, इस बेहद के मैपन में रहने वाली आत्माओं को ऐसे परमात्मा पैगाम देने वाली, परमात्मा संदेशवाहक, परमात्मा संदेश फैलाने वाली, भगवान को से आत्माओं को मिला, आत्माओं को भगवान से मिलाने वाली, भगवान को आत्माओं से मिलाने वाली, ये भी ठीक है, और परोपकारी, और ऐसे उपराम रहने वाली आत्माओं को, ऐसे अपरंपार प्राप्तियों के नशे में रहने वाली आत्मा, ऐसे ऐसे शरीर को लोन, शरीर लोन में मिला है ये समझने वाली आत्माओं को, ऐसे मैपन का त्याग करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऊपर से आई हुई आत्माओं को, ऐसे जिन्हें याद है उनको ऊपर जाना है आत्माओं को, ऐसे अवतरित आत्माओं को, अवतरित जीवन वाले आत्माओं को, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, ऐसे सन्ना अर्थात स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, ऐसे घर में वापस लौटने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे कर्म के बंधन में फंसने न फंसने वाली आत्माओं को, नए खाते निर्माण न करने वाली आत्माओं को, और देहभान से मुक्त रहने वाले, देहभान की डाली पर बंधना नहीं उड़ते रहने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।